जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा ram ram hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Hari bol Nitai Gaura Hari bol Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivraj Akacharya Ashtotra Sat His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Granthraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveda Bhakti Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakti Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakti Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tamsajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Shri Gurun Dinatarinam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ ಆರಾಧ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವ್ರಜೇಶ ತನಯಸ್ ತದ್ಧಾಮ ವೃಂದಾವನಂ ರಮ್ಯಾ ಕಾಚಿದುಪಾಸನಾ ವ್ರಜವಧೂ ವರ್ಗೇಣಯ ಕಲ್ಪಿತಾ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಪ್ರಮಾಣಮಮಲಂ ಪ್ರೇಮಾಪುಮರ್ಥೋ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭೋರ್ಮತಮಿದಂ ತತ್ರಾದರಃ ನ ಪರಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ತು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಪ್ನೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಪರಿವಾರಕ್ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಚುಕೆ ಹೇ ಔರ್ ಗಂಡಕಿ ನದಿಕ್ಕೆ ತಟ ಪರ್ ಪುಲಹ ಆಶ್ರಮ ಮೇ ಜಾ ಚುಕೆ ಹೇ. ಗಂಡಕಿ ನದಿ ವರಾಹ ಪುರಾಣ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಏಕ ಬಹುತ್ ಪಾವನ್ ನದಿ ಹೈ ಔರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಭೀ ಶುಕದೇವ್ ಜಿ ಯಹಿ ಕಹತೆ ಹೈ. ವೈಸೆ ಗಂಡಕಿ ನದಿ ವೃಂದಾದೇವಿ ಯಾ ತುಲಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾ ಏಕ ರೂಪ ಹೈ ಔರ್ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಶಿಲಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ರೂಪ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಚರ್ಚಾ ಅಬ್ ಹಮ್ ನಹೀ ಕರೆಂಗೆ. ಪರಂತು ಐಸಿ ಲೀಲಾ ಹುಯಿ ಜಿಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಶಿಲಾ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಯಹಾಂ ಪ್ರಕಟ ಹುಯೆ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಸೇವಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ವೃಂದಾದೇವಿ ಯಾ ತುಲಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಭೀ ಪ್ರಕಟ ಹುಯಿ ಏಕ ನದಿ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ. ವರಾಹ ಪುರಾಣ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಈ ಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ಏಕ ಬಹುತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂದಿರ ವಹಾಂ ಹೈ ಮುಕ್ತಿನಾಥ್. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಹೀ ತೋ ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೀ ತೋ ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ಹೈ, ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಸಮರ್ಥ ಹೈ. ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಷ್ಣುರ್ ಏವನ ಸಂಶಯ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಸಿವಾಯ ಔರ್ ಕೋಯ್ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಇಸ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ನಾಮ ಮುಕ್ತಿ ಪದ ಹೈ ಯಾ ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ಹೈ, ಮುಕ್ತಿ ಕೆ ನಾಥ್ ಯಾ ವೋ ಜಿನ್ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಜಿನ್ಕೆ ಪದ ಮೇ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಮುಕ್ತಿಯಾ ನಿವಾಸ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಮುಕ್ತಿ ಪದ. ತೋ ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ಜಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಔರ್ ಭೂದೇವಿ ಜೋ ಉನ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ವಹಾಂ ಪೆ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೈ. ವೈಸೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ಏಕ ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಹೈ. ಶ್ರೀಲ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ನೇ ಐಸೆ 108 ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನೋ ಕೋ ಚುನಾ ಥಾ, ಉನ್ಮೇ ಸೆ ವೃಂದಾವನ್ ತೋ ಅಯೋ ಹೈ ಹೀ, ಅಯೋಧ್ಯಾ ಹೈ ಔರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೈ ಔರ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋ ಮೇ ಸೆ ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ಭೀ ಏಕ ಹೈ तो श्री संप्रदाय के लोग उनको दिव्य देशम कहते हैं, दिव्य क्षेत्र। और पास में दूसरा एक गांव है शालिग्राम, तो और पास में ही आगे फिर पुलह आश्रम है। आज भी यह स्थान है जहां पुलह ऋषि ने तपस्या की थी, जहां भरत महाराज गए थे अपनी तपस्या करने के लिए। तो ये सारे ऐतिहासिक स्थान हैं, अभी भी हैं ये स्थान। तो भरत महाराज इस स्थान में गए थे, और जिस स्थान में शालग्राम शिलाएं पाई जाती हैं वो चक्र तीर्थ कहलाता है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि गंडकी नदी को चक्र नदी भी कहते हैं, क्योंकि वहां शालिग्राम शिलाएं पाई जाती हैं जिनमें चक्र होते हैं। जिन शिलाओं में चक्र होते हैं वो शालिग्राम शिलाएं होती हैं। लेकिन इनका नाम शालिग्राम शिला क्यों है? शिला क्योंकि ये पत्थर है, और शालिग्राम इसलिए कि प्राचीन कालों में पुलह आश्रम घिरा हुआ रहता था ऐसे वन से जिसमें साल वृक्ष प्रचुर मात्रा में थे। इसलिए क्योंकि ये शिलाएं वहां उस क्षेत्र में पाई गई तो उनका नाम शालिग्राम शिला हो गया। तो ये शालिग्राम शिला, जैसे हम कल कह रहे थे, ये भगवान विष्णु के रूप होने के नाते सारे ब्राह्मण अपने घर में इनकी पूजा करते हैं। यहां तक कि जो वैष्णव भी नहीं है ब्राह्मण, भले वो स्मार्त ब्राह्मण भी क्यों ना हो, वो अपने घर में शालिग्राम शिला अवश्य रखते हैं। हाँ, आजकल तो बात अलग है, क्योंकि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है ये तो एक बड़ी समस्या हो गई है। परंतु एक 40 50 60 साल पहले की बात भी है कि लोग ब्राह्मण जो है, प्रामाणिक ब्राह्मण है, वो अपने घरों में शालिग्राम शिला रखा करते थे, उनकी उपासना किया करते थे। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जगन्नाथ मिश्र के घर में भी शालिग्राम शिला हुआ करता था, और वो नित्य नियम से उनकी सेवा किया करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वो अपनी बाल लीला कर रहे थे, तो अपने घर में इधर उधर चलते समय उनके चरण चिन्ह कभी जमीन में पड़ जाते, और श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, तो भगवान के भी कई चिन्ह होते हैं। भगवान को कैसे पहचाना जा सकता है? इनके लक्षण होते हैं। सर्वप्रथम तो भविष्यवाणी हुई होनी चाहिए उनके बारे में शास्त्रों में। दूसरी बात, विराट रूप उनको दिखाना चाहिए। तीसरी बात, उनको ऐसे कोई अद्भुत कार्य कर दिखाना चाहिए जो किसी साधारण या असाधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और चौथी बात यह है कि उनके कर कमलों में और उनके चरणों के, चरण कमलों के तलवों में ऐसे चिन्ह होने चाहिए जो केवल भगवान के होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में या उनके तलवों में कौन से चिन्ह हैं, कोई बता सकते हैं आप? क्या क्या पाया जाता है उनके चरण चिन्ह? शंख चक्र है, मीन है, अंकुश है, अर्धचंद्र है, त्रिकोण है, फिर ध्वज है, पताका है, वज्र है, ऐसे अनेक चिन्ह हैं। तो जब किसी के तलवों में ये चिन्ह पाए जाते हैं जन्म से ही, तो हम जान सकते हैं कि ये भगवान है। तो अगली बार ऐसे कोई व्यक्ति से आप मिले जो कहे कि मैं भगवान हूं, तो कहिए आपके चरण कमलों का दर्शन तो कराइए, देख तो लेते हैं कि आपके तलवों में भी ये शंख चक्र ध्वज वज्र मीन आदि के निशान हैं या नहीं हैं, और साथ साथ थोड़ा विराट रूप भी आप दिखा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण है, तो वो अपने चरण चिन्हों को इधर उधर लगाते रहे। और जगन्नाथ मिश्र और शची माता ने देखा कि अरे ये चिन्ह, ये तो भगवान के चिन्ह है, ये हमारे घर में कैसे आए इधर उधर। लेकिन अपने वात्सल्य स्नेह के कारण वो जान नहीं पाए कि उनका ही पुत्र, तथा कथित पुत्र स्वयं श्री कृष्ण है और उनके ये चरण चिन्ह है। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारी शालिग्राम शिला की लीला है, हम घर में शालिग्राम शिला की उपासना करते हैं बड़े भक्ति भाव से, ये तो भगवान ही है, तो इन्होंने ऐसी लीला कर दी। ये कभी अपनी ऐसे लीला करके इधर उधर घर में भ्रमण करते हैं, तो इसलिए ऐसे हुआ। परंतु वास्तव में तो ये शालिग्राम शिला की जो उद्गम है श्री कृष्ण, उनकी लीला थी। तो खैर, शालिग्राम शिला ये हर एक ब्राह्मण घर में हुआ करता था, इसलिए जो सन्यासी हुआ करते थे पहले, वो केवल ब्राह्मणों के घर में या वैष्णवों के घर में भोजन लिया करते थे, क्योंकि केवल वैष्णव के घर में या ब्राह्मण के घर में भगवान के श्री विग्रह को भोग चढ़ाकर प्रसाद खाया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो यदि कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण वैष्णव न भी हो, तो अवश्य उसके घर में शालिग्राम शिला तो हुआ होगा, और वो भगवान को शालिग्राम शिला को भोग चढ़ाएगा, तो सन्यासी जाके ऐसे घर में प्रसाद स्वीकार करते थे। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और थोड़े मंदिरों का निर्माण हो गया, तो कई भक्त बड़े आतुर थे कि हमारे मंदिरों में शालिग्राम शिला की उपासना शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने जानबूझकर इसे रोक के रखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे ये शालिग्राम शिला की पूजा तो केवल ऐसे लोगों को करना चाहिए जिन जो वास्तव में ब्राह्मण हैं, विशेष करके जिनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, जो सुसंस्कृत हैं, जो भलीभांति परिचित हैं नियमों से। और इसलिए हम अब हमारे संस्था में शालिग्राम शिला की उपासना शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब हमारे भक्त लोग तैयार हो जाएंगे और इस काबिल होंगे कि वो शालिग्राम शिला की उपासना कर सकें, तो उस समय हमारे संस्था के मंदिरों में भी शालिग्राम शिला की उपासना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। दूसरे शब्द में प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे मंदिरों में भी शालिग्राम शिला की उपासना हो जाए धीरे धीरे से। वैसे भगवान की जो अर्चा विग्रह है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, परंतु शालिग्राम शिला की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आपको शालिग्राम शिला मिले, आप उपासना शुरू कर सकते हैं, किसी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे संस्था के मंदिरों में जब मंदिर का उद्घाटन होता है, तो मूर्तियां तो पहले ही चली आती हैं और अनेक दिनों तक मूर्तियां वैसे ही रहती हैं। फिर प्राण उद्घाटन के दिन, प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है और फिर उनकी पूजा शुरू हो जाती है, उसके पहले नहीं। परंतु शालिग्राम शिला के लिए ऐसे नहीं है, जिस दिन से आपके हाथ में आए आप शुरू कर सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी एक बार जब गंडकी नदी में यात्रा के लिए गए थे, तो जैसे ही उन्होंने करकमल डाले जल में, तो उनके हाथ में शालिग्राम आ गए। उनकी इच्छा नहीं थी शालिग्राम शिला की पूजा करने की, तो उन्होंने जल में डाल दिया, दोबारा लिया तो दोबारा आ गए, तीसरी बार लिया तीसरी बार भी आ गए, तो उन्होंने समझा कि शालिग्राम की इच्छा है कि मैं इनकी सेवा करूं, तो वो फिर ले गए वृंदावन और उनकी सेवा करते रहे। सेवा करते करते उन्होंने देखा कि और सनातन गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी हैं, उनके सुंदर मूर्तियां हैं, सनातन गोस्वामी के पास मदन मोहन जी की मूर्ति है, उधर राधा गोविंद देव प्रकट हुए हैं और वो सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, वस्त्र अलंकार आदि से सुशोभित कर रहे हैं भगवान के अर्चा विग्रह को। लेकिन मेरे पास शालिग्राम शिला है, मैं तो तुलसी आदि से सेवा तो कर ही लेता हूँ लेकिन श्रृंगार आदि नहीं कर पाता हूँ। तो फिर एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा को जानकर शालिग्राम शिला एक श्री कृष्ण की मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। क्या नाम उनका? राधा रमण जी। तो ऐसे चमत्कार शालिग्राम शिला भी अवश्य करते हैं। वैसे बताया जाता है कि शालिग्राम शिला तो उस इलाके में प्राप्त होते हैं चक्रतीर्थ में, परंतु केवल उनकी पूजा ही की जानी चाहिए जो जल में पाए जाते हैं, जो पहाड़ में मिट्टी में पाए जाते हैं बाहर नदी के बाहर, उनकी उपासना नहीं होती है। हालांकि दोनों शालिग्राम शिला होते हैं लेकिन उपासना केवल उनकी होती है जो जलज शिला होती हैं। जलज मतलब जो जल में पाई जाती हैं, जो स्थलज होते हैं उनकी उपासना नहीं होती। तो खैर, ऐसे स्थान में, ऐसे पावन स्थान में भरत महाराज चले गए और उन्होंने अपनी तपस्या करना, भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया। वहाँ भगवान की सेवा करते करते वो बहुत सरल जीवन जी रहे थे, क्योंकि वहाँ वन में क्या मिलता है? तो जो थोड़े बहुत कंदमूल फल फूल आदि मिलते थे गंडकी नदी के जल से, तुलसी दल लेकर वो भगवान को अर्पण करके वो सेवा कर रहे थे। ऐसे समय बीतता गया। भरत महाराज अपनी सेवा में इतने मग्न हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा है। और सेवा करते करते उनके हृदय से थोड़े बहुत जो भी भौतिक कलमश हुए होंगे वो सब भी पूरी तरह से मिट गए प्राय। और फिर उनके हृदय में भगवान के प्रति तीव्र प्रेम और भी जागृत होने लगा। वो भूल गए कि मैं राजा था, मेरी इतनी संपत्ति थी, मेरा परिवार भी था। वो अब 24 घंटे केवल भगवान की सेवा में मग्न रहे। सेवा ऐसी होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शनि शनि ऐसे होने लगा कि उनके हृदय में भगवत प्रेम उभर आने के कारण जो भाव भक्ति के जो लक्षण हैं, जो अष्ट सात्विक विकार हैं, वो भी प्रकट होने लगे। भाव भक्ति ये बहुत ऊंचा स्तर है भक्ति का। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो वो साधन भक्ति है। साधन भक्ति की शुरुआत होती है वैधि भक्ति से। वैधि भक्ति अर्थात जो भक्ति विधियों पर आधारित है, प्रेम पर नहीं। जो हम कर रहे हैं अब उसे वैधि भक्ति कहते हैं, वैधि साधन भक्ति। साधन अर्थात अभ्यास की अवस्था है, परिपूर्णता की अवस्था नहीं है। अभ्यास करते करते हम परिपूर्णता की अवस्था को प्राप्त करेंगे और अभ्यास करते करते भी जो शुरुआत की अवस्था है उसे वैधि साधन भक्ति कहते हैं। क्योंकि भगवान की सेवा करने की जो प्रेरणा है हमारे हृदय में, वो इसलिए नहीं है कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, वो इसलिए है कि हम आज्ञाकारी हैं। थोड़ी बहुत श्रद्धा हमारे हृदय में है गुरु के आदेश के अनुसार, शास्त्रों पर। तो जब हम शास्त्रों के प्रति, गुरु महाराज के आदेशों के प्रति हम आज्ञाकारी होते हैं और ये आधार होता है हमारा भगवान की सेवा करने के लिए, तो इसे वैधि साधन भक्ति कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे विधियों का पालन करते करते हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है तो हृदय में भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत होने लगता है। फिर इसे रागानुग साधन भक्ति कहते हैं। ऐसे अवस्था में किसी को कुछ बताना नहीं होता कि भाई देखो जप करना, कीर्तन करो, पाप नहीं करना, चार नियमों का पालन करना, ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति स्वयं ही स्वाभाविक रूप से इन नियमों का पालन करता है, क्योंकि अब उसके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण तीव्र हो चुका होता है। फिर भी अभी तक वो अभ्यास के स्तर में ही है, तो ये साधन भक्ति की अवस्था है। और धीरे धीरे से जब व्यक्ति और बढ़ने लगता है अपने साधन में, तो उसके अंदर प्रेम का विकास होने लगता है, फिर ये अष्ट सात्विक विकार उसके हृदय में आने लगते हैं। अष्ट सात्विक विकार, सात्विक विकार आठ प्रकार के होते हैं, चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में इनका काफी विस्तार में वर्णन है। उदाहरणार्थ रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों से अश्रु धारा होना, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाना, पसीना छूटना इत्यादि, ऐसे कई लक्षण हैं उन व्यक्तियों के जो भाव भक्ति के स्तर में हैं। ये भाव भक्ति का स्तर साधन भक्ति से आगे है, परंतु अभी तक पूरी तरह से परिपूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है, बस पहुंचे हैं, थोड़ा और समय बाकी है बस, लेकिन फिर भी बहुत ऊंचा स्थान है। भाव भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि व्यक्ति इस काबिल हो जाता है कि वो स्वयं भगवान का दर्शन करे आमने सामने, भगवान उनके सामने प्रकट हो सकते हैं, उनको दर्शन दे सकते हैं। ये है भाव भक्ति का स्तर। फिर भी थोड़ा बहुत अनर्थ उस भक्त के हृदय में अभी तक रह जाता है। जब भाव भक्ति से आगे बढ़ के व्यक्ति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, उस समय व्यक्ति अब अनर्थों से, कलमशों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, फिर वो वास्तव में शुद्ध भक्त कहलाता है। शुद्धता के भी स्तर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ये अच्छा खिलाड़ी है, ये और भी अच्छा खिलाड़ी है, ये सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो अच्छेपन के भी स्तर होते हैं। उसी तरह से हम कहते हैं ये तो शुद्ध भक्त हैं। हाँ, कहने के लिए कहते हैं ये शुद्ध भक्त है, लेकिन किस स्तर में है इसका स्पष्टीकरण हम नहीं करते, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है कि हम पहचान सकें। खैर, हमारे लिए तो भाव भक्त तो शुद्ध भक्त ही है, हमारे लिए एक रागानुगत साधन भक्त भी शुद्ध भक्त ही है, हमारे लिए एक ऐसे वैधी भक्त जो निष्ठा पूर्वक भक्ति कर रहा है वो भी तो शुद्ध भक्त ही है हमारे लिए। तो शुद्ध भक्त कितने स्तर होते हैं, तो भरत महाराज का कौन सा स्तर था? भाव भक्ति का स्तर था। तो देखिए, भगवान की सेवा करते करते भरत महाराज को कितना ऊंचा स्थान मिल गया। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैसे शालिग्राम शिला की सेवा करने से अधिक महत्वपूर्ण इस कलयुग में है भगवान का नाम लेना, फिर भी अर्चा विग्रह की सेवा का महत्व भी है, क्योंकि अर्चा विग्रह की सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारा हृदय शांत हो जाता है, वासनाओं से मुक्त हो जाता है, और ऐसी अवस्था में हम और ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक भगवान का नामोच्चारण कर सकते हैं। नहीं तो भगवान का नाम लेते लेते मन तरह तरह के विचारों से विचलित हो जाता है। तो हमारे संस्था में इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अर्चा विग्रह की सेवा की शुरुआत भी कर ली। तो हर एक घर में भगवान की अर्चा विग्रह तो होनी चाहिए, मूर्ति रूप में न हो, कम से कम तस्वीर के रूप में, चित्र के रूप में तो हो। और यदि भक्ति में और भक्त स्थिर हो जाते हैं गृहस्थी में रहते हुए, तो छोटे से विग्रह भी हो सकते हैं, बड़े विग्रहों की आवश्यकता नहीं है। छोटे विग्रह हो, गौर निताई के हो तो बहुत अच्छा, और जो और अच्छी तरह से नियम का पालन कर सकते हैं, स्थिरता से अर्चक विग्रह की सेवा कर सकते हैं, वो राधा कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं। परंतु राधा कृष्ण की मूर्तियों के लिए जो नियम है वो ज्यादा कड़क हैं, इसलिए गौर निताई की मूर्तियां, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की मूर्तियां, इनकी सेवा करना ठीक है। तो खैर, भरत महाराज ऐसे सेवा करते करते भक्ति में प्रगति करते गए, और दिन भर जैसे ही वो सेवा करते थे उनकी आंखों से कृष्ण प्रेम के आंसू बहते रहते थे। और इस समय उन्होंने कर्मकांड आदि के नियमों की परवाह बिल्कुल नहीं की। वैसे वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी भी सभ्य व्यक्ति को अनेक नियमों का पालन करना चाहिए, और साधारण व्यक्ति तो करते ही थे, परंतु जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो चुके होते थे वो ऐसे भाव विभोर हो जाते थे कि ऐसे प्रेमावेश में वो कभी कभी इन नियमों का पालन नहीं करते थे, क्योंकि ये जो नियम है ये निम्न श्रेणी पर होते हैं और कृष्ण प्रेम ऊंचे श्रेणी पर होता है। तो जब हम ऊंचे स्तर पे होते हैं तो निम्न स्तर के जो नियम होते हैं उनको हम त्याग सकते हैं। जैसे बच्चा जब स्कूल से बाहर चल के कॉलेज में जाता है तो स्कूल के नियम अब लागू नहीं होते हैं उसके ऊपर। जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसकी वर्दी पहननी पड़ती है, यूनिफॉर्म है ना, और कई नियम होते हैं। लेकिन जब कॉलेज में बच्चा जाता है फिर अब काफ़ी छूट मिल जाती है, अब तरह तरह के वस्त्र पहनने लगते हैं। कल ही हमें नित्य कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि एक यहाँ कॉलेज में कोई प्राध्यापक थे, वो चाहते थे कि जो छात्र छात्री हैं वहाँ पर वो सीधे अच्छे कपड़े वस्त्र पहने, क्योंकि आजकल आप जानते हैं लोग तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं। तो उन्होंने कोशिश की लेकिन विद्रोह हुआ बड़ा और उनको पद से हटाया गया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि बच्चों को छूट देनी चाहिए जैसे चाहे वो वस्त्र पहने या न पहने। तो खैर, ऐसे नियम तो ऐसे अनेक होते हैं। जो व्यक्ति भक्ति के स्तर में आगे बढ़ते रहता है तो वो निम्न श्रेणी के जो निम्न स्तर के जो नियम हैं उनको स्वाभाविक रूप से छोड़ सकता है और छोड़ देता है। जैसे माधवेंद्र पुरी कहते थे, उन्होंने उनका एक श्लोक है प्रसिद्ध, क्योंकि माधवेंद्र पुरी तो महाभागवत शुद्ध भक्त हैं भगवान कृष्ण के, तो वो कहते हैं संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भोस्नान तुभ्यम नमो। वो कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और मुझे 3 बार दिन में संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप आदि करना चाहिए, लेकिन हे संध्या वंदन, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपको आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। भद्रमस्तु भवतो, भद्र हो आपका, ठीक सब ठीक ठाक चले, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपकी सेवा। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो, कि हे दिन में 3 बार स्नान करने के जो नियम है, हे स्नान देवी, मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ। वैसे तो नियम है कि दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, आजकल लोग जल से डरते हैं वो दूसरी बात है, स्नान का नाम नहीं लेते। विदेश में हम एक बार जब गए थे तो लोग बता रहे थे किसी एक देश में लोग 1 हफ्ते में 1 बार स्नान करते हैं रविवार के दिन, और दिन में सुबह आते हैं तो दफ्तर में जब आते हैं, भक्त बता रहे थे जो वहाँ नौकरी कर रहे थे कि 8 बजे दफ्तर की शुरुआत होती है तो 7:45 बजे सब पहुँच जाते हैं, ना उन्होंने दांतों को ब्रश किया हुआ होता है ना कुछ, बस बिस्तर से उठ के चले आते हैं, सीधे लेट हो गया तो चले आते हैं और दफ्तर के शौचालय में फिर अपना जो करना है वो कर लेते हैं, स्नान तो नहीं हो सकता, और जल्दी से गड़बड़ फिर 8 बजे हाजिर हो जाते हैं अपने सेवा के लिए। फिर रविवार के दिन एक बार मिल आराम से समय मिलता है, स्नान कर लेते हैं, बाकी दिन में जो 6 दिनों में परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के चले आते हैं उससे काम चला लेते हैं। तो ये कलयुग है, इसलिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है, जब कलयुग के लक्षणों का वर्णन हो रहा है तो सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग में समय ऐसे आएगा जब व्यक्ति सोचेगा कि केवल स्नान करने मात्र से मैं बहुत शुद्ध हो गया हूँ, मतलब स्नान एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कलयुग में आगे चल के। तो खैर माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि हे स्नान स्नान देवी भद्रम भवतु, आपको भी आप धन्य हो, लेकिन आपकी सेवा हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों माधवेंद्रपुरी ऐसे भाव विभोर हो जाते थे कभी कभी, तो स्नान क्या सब कुछ भूल जाते थे, भोजन भूल जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे। तो यदि हम भी स्नान को त्याग करना चाहते हैं तो भोजन निद्रा भी त्यागनी चाहिए, फिर हम कर सकते हैं। इसलिए हम नकल नहीं कर सकते माधवेंद्रपुरी की। यदि हम कहें कि माधवेंद्रपुरी ने 3 बार दिन में स्नान नहीं किया इत्यादि, तो हम भी करें तो माधवेंद्रपुरी के तपस्या की भी नकल करनी चाहिए। माधवेंद्रपुरी जो है अजगर वृत्ति का पालन करते थे, इसका मतलब है कि यदि कोई सामने से आके उनको कुछ भोजन देता तो वो स्वीकार करते, कोई नहीं देता तो भगवान की योजना समझकर उपवास कर लेते। कभी कभी 1 दिन बीत जाता, 2 दिन बीत जाते, 3 दिन बीत जाते, बस वो लगे रहते अपने भजन साधन में, भजन में, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम में इतने मग्न रहते थे। इसलिए यही उनके शरीर को भी पोषण प्रदान करता है, आत्मा को और शरीर को दोनों को। तो खैर माधवेंद्रपुरी ऐसे कहते हैं, संध्या वंदनम भद्रमस्त भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरतश्च तर्पण विधो नह क्षम क्षम्यताम। वो कहते हैं कि हे पितरों, आपको वैसे पिंड तर्पण आदि करना चाहिए, श्राद्ध आदि करना चाहिए, क्षमा कीजिए अब मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अब मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया हूं, और इसलिए क्षमा क्षम्यता, मुझे क्षमा आप कर दीजिए। अब यादव कुलोत्तमस्य कंसद विषह, भगवान श्री कृष्ण जो यादव कुल के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो कंस के शत्रु हैं, ऐसे व्यक्ति की सेवा मैं कर रहा हूं। स्मारम स्मारम अघम हरामी तद अलम मन्ये किम अन्येन मे, जब मैं इन श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं, स्मरण स्मरम, तो मेरे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं स्वाभाविक तौर से, तो कृष्ण का स्मरण करना मेरे लिए पर्याप्त है, और किसी चीज की क्या आवश्यकता है मुझे, ये पिंड करना, तर्पण करना, पितरों की सेवा करना, देवताओं की पूजा करना। भो देवा पितरस, हे पितर, हे पितरों, हे देवतागण, क्षमा कीजिए हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण के स्मरण में हम इतने मग्न हैं कि हम समझते हैं कि हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो गंगा जी के तट पे रहता है उसे कुआं खोदने की क्या जरूरत है, सही है ना। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्रुतोदके या तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसने सारे शास्त्रों के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, फिर जो भिन्न भिन्न जो विधि विधान होते हैं, नियम आदि होते हैं, उनका पालन करने का क्या मतलब है उनको। इसलिए पुराणों में यह भी कहा गया है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकराः। हमेशा भगवान का स्मरण करना और कभी भी भगवान को भूलना नहीं, ये दो नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं शास्त्रों के। और अन्य जितने भी सारे विधि और निषेध हैं, जितने भी नियम हैं शास्त्रों में बताए हुए, वो सारे नियम इन दो नियमों के किंकर या दास हैं। दूसरे शब्दों में इन सारे नियमों का पालन करने का उद्देश्य है कि हम इन दो नियमों का पालन कर पाएं, जो कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करना और भगवान कृष्ण को कभी भूलना नहीं। तो ऐसे अवस्था में थे भरत महाराज, हम कल्पना कर सकते हैं कितने भाव विभोर हो गए थे वो अपनी सेवा में। उनके लिए और कुछ संसार में नहीं था, बस वो और भगवान कृष्ण की सेवा। और ऐसे उनका जीना भी इतना सरल था, कंदमूल के ऊपर जीते थे, गंडकी नदी के पावन वातावरण में निवास करके दिन में गंडकी नदी में स्नान भी कर लेते और जलपान भी कर लेते। तो ऐसे पवित्र नदियां सारे पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जहां नदियां नहीं है वहां समस्याएं होती हैं। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे स्थान में नहीं निवास करना चाहिए जहां नदी न हो, जहां वैद्य न हो, जहां कोई राजा न हो। हाँ, चंडीगढ़ के पास तो अवश्य नदी नहीं है मेरे ख्याल से। नजदीक नदी कौन सी है यहाँ? कितनी दूर है यहाँ से? आधा घंटा है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो आप भी नदी के पास में ही रह रहे हैं। सूखी हुई है, अरे रे। लेकिन आप सब भक्ति कर रहे हैं ना, तो अब उसमें पानी फिर से आ जाएगा धीरे धीरे। खैर, कलयुग में क्या कहा जाए, नदियां भी सूखती जा रही हैं, क्योंकि हम नदियों का, जल का, पृथ्वी का, भगवान का अनादर कर रहे हैं। हम वैदिक सभ्यता के अनुसार पर्यावरण का पूरा पूरा हमें ख्याल रखना चाहिए। आजकल हम ऐसे देखते हैं नदियों का इतना अनादर होता है, देखने में बहुत बुरा लगता है। कई जगह हम जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रक लॉरी को आदि नदियों में ले जाते हैं, वहाँ उनको धोते हैं, तो सारा डीजल पेट्रोल जो है सब नदियों में चले जाता है। वहाँ कितने प्राणी हैं, लोग स्नान भी करते हैं, लोग पानी पीते भी हैं, और आजकल लोग शौच आदि भी नदी में कर लेते हैं। तो ऐसे ये केवल कलयुग में इस समय हो रहा है। केवल 50 साल 100 साल पहले भी गांव में भी, एक साधारण गांव का निवासी भी कभी भी नदियों में जाके शौच नहीं करता था। नदी को पवित्र मानता था, हर एक नदी पवित्र मानी जाती है, बल्कि जल ही पवित्र मानी जाती है। परंतु आज समय कितना बदल गया है। आज जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके सारा जो उत्पादन है वो बाहर नदियों में फेंका जाता है। इसलिए जमुना जी की क्या दशा है आप जानते हैं ना। ऐसे ऐसे तस्वीर हैं जो आपको दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सारी दुनिया भर की गंदगी जो है हम हमारे पवित्र नदियों में भर देते हैं। सारे फैक्ट्रियों की जो गंदगी है, हमारे घर की गंदगी है, सब जमुना जी में, गंगा जी में हम डाल देते हैं। तो कैसे हमारा समाज का भला हो सकता है? कैसे कोई शुभ चीजें हो सकती हैं समाज में? जो हमारे लिए पूजनीय हैं, ऐसे ही चीजों को हम इतने प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो खैर, नदियों का सम्मान होना चाहिए। पवित्र स्थान, पवित्र हैं ये सब सारी नदियां। जहां एक पवित्र नदी बहती है तो वो स्थान भी पावन माना जाता है। तो गंडकी नदी भी इसी प्रकार से थी, सारे क्षेत्र को पावन कराने वाली। तो भरत महाराज वहां पर रहते, स्नान करते, और हम देखते हैं जब हम नदी के पास में जाते हैं मन कितना प्रसन्न हो जाता है ना, क्योंकि नदी के निकट में वातावरण ही ऐसे होता है। नदी बहती हुई आती है पहाड़ों से, शुद्ध जल वहां से लेकर आती है, और जल ही नहीं, जितने भी पवित्र धातु हैं वो भी पहाड़ों से नीचे आते हैं, और फिर वो धातु जल के साथ खेत में जाते हैं। फिर खेत में ये धातु जाते हैं तो जो खेती है, जो अनाज है, वो भी उसमें वो पोषण चले जाता है। तरह तरह के जल हैं और जल के भी गुण होते हैं। जैसे समुद्र का जल है, इसका एक गुण होता है, एक प्रकार का। जो कुएं के अंदर पानी होता है, उसका एक प्रकार का गुण है। जो वर्षा का जल है, और एक प्रकार का गुण है, लक्षण है उसके। जो सरोवर में पाया जाता है जल, उसके लक्षण कुछ और ही होते हैं। परंतु सबसे पवित्र जल कौन सा है आपको पता है शास्त्रों के अनुसार? हाँ, गंगा जल तो है, ठीक है। लेकिन साधारण हम कह रहे हैं, भौतिक दृष्टि से कह रहे हैं, जो जल एक नदी में बहते हुए आता है और जब नदी में मोड़ हो और जहां पत्थर हो, जो बहते हुए नदी का जल पत्थरों से मोड़ पे टकराए, टकराने के बाद जो जल आता है, वो जल सबसे पवित्र माना जाता है। इसलिए गंगा जब बहती हिमालय से आके पहाड़ों से नीचे आती हैं, तो टकरा के, पत्थरों से टकरा के आती हैं इसलिए। और वैसे भी हिमालय में ऊपर तो बहुत शुद्ध है, गंगोत्री से आती है, इसलिए वो जो जल है बहुत पवित्र माना जाता है। तो पहाड़ों का, नदियों का बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है। पहाड़ नहीं होंगे तो नदियां नहीं होंगी। आजकल हम पहाड़ के पहाड़ तोड़ते जा रहे हैं, तो नदियां भी खत्म हो जाएंगी। तो खैर, ये एक विषय ही अलग है, जल का, नदियों का, पर्यावरण का। लेकिन पुराने जमाने में देखिए लोग कैसे रहा करते थे, पर्यावरण को अच्छी तरह से बनाए रखते थे। इसलिए भरत महाराज जैसे संतों को, जो तपस्या करने जाना चाहते थे, उनके लिए स्थान हुआ करते थे। वन भी अलग अलग प्रकार के होते थे। जैसे कई वन होते थे जो केवल क्षत्रियों को शिकार के लिए अलग से रखे जाते थे। उनको प्रशिक्षण चाहिए ना, इंसान को मारने के पहले तैयारी होनी चाहिए, तो पशुओं का शिकार कभी कभी करते थे। थोड़े ऐसे वन होते थे जिनमें केवल तपस्या की जाती थी, उनको तपोवन कहते थे। यह न तो शिकार की अनुमति थी, न कोई और कार्य, केवल संतों के लिए, ऋषियों के लिए, तपस्या के लिए स्थान था। तो ऐसे अनेक तरह के वन हुआ करते थे। आजकल समय कितना बदल गया है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय भरत महाराज पुलह आश्रम में गए, तो वहां वातावरण कितना रमणीय और सुंदर हुआ होगा, और भजन साधन के लिए कितना अनुकूल। तो आजकल आधुनिक शहरों के बीच में रहते हुए गाड़ियों की आवाजें, मोबाइल फोन, मंदिरों में भी मोबाइल फोन की आवाजें, और तरह तरह के मन को विचलित करने वाले जो प्रभाव होते हैं, आधुनिक शहरों में होते हैं। इसलिए यहाँ साधन भजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वन ये सत्वगुण में होता है, शहर रजगुण में होता है, और जो वेश्यालय और शराब के घर होते हैं वो सब तमोगुण में होते हैं। तो आजकल रजगुण और तमोगुण का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि सात्विक वातावरण प्राय नहीं रहा आज। इसलिए भक्तों के लिए साधन भजन करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने शहरों के बीच में ही ऐसे सुंदर मंदिरों की स्थापना कर ली, जहां सात्विक वातावरण भले न भी हो कभी कभी, क्योंकि बाहर की आवाजें आदि तो आती ही रहती हैं, परंतु सत्वगुण के ऊपर परे भक्ति का माहौल हो, क्योंकि भगवान की भक्ति तीनों गुणों से परे है। इसलिए मंदिर में अधिक से अधिक हमें यह आने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यहां ऐसे एक दिव्य वातावरण में रह के हमारा मन अच्छी तरह से भगवान के ऊपर केंद्रित हो सकता है, तो हम भी भरत महाराज की तरह है, हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। भरत महाराज ने कंदमूल खाए, हम अच्छा प्रसाद यहाँ लेंगे। भरत महाराज ने थोड़े जो वहाँ के फल फूल थे वो अर्पण किए, हम यहाँ जो भी उपलब्ध है वो भगवान को अर्पण करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। राधा माधव जी प्रसन्न रहेंगे, प्रभुपाद जी प्रसन्न रहेंगे, तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। तो भरत महाराज के पद चिन्हों में हम आजकल इस तरह से चल सकते हैं। तो ऐसे करते करते भरत महाराज अपने प्रेम के चेतना में मग्न रहे, कैसे समय बीतता गया उनको पता नहीं चला। लेकिन एक दिन एक घटना हुई, लेकिन वो घटना क्या है, जिस घटना के कारण भरत महाराज के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया, बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आ गया, जिसका असर आगे चल के इनको दो जन्म और लगने वाले थे। लेकिन वो मोड़ क्या आया, वो घटना क्या हुई, यदि आप सुनना चाहते हैं तो आपको कल सुबह आना होगा 7:45। तो कल हम चर्चा करेंगे कि भरत महाराज के जीवन में कौन सी घटना हुई। तो अब थोड़ा समय बचा है, 5-10 मिनट, तो यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ जी,
आज आपने जैसे बताया कि घरों में गोरनताई का पूजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तो जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका हमारे संप्रदाय में पूजा करना मतलब कितना सही है, करना चाहिए,
वर्जित नहीं है? जो करना चाहे कर सकते हैं, वर्जित तो नहीं है। वैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वो उनकी बाल लीला है, जब एक ब्राह्मण उनके यहाँ आए थे और जगन्नाथ मिश्र ने उनको प्रसाद बनाने के लिए व्यवस्था कर दी, तो वो ब्राह्मण बाल गोपाल जी के उपासक थे। एक थैली में रखते थे, थैली को गले में लगाकर वो इधर उधर भ्रमण करते थे, तो वो भी तो बाल गोपाल के उपासक थे, तो वर्जित नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ, हरे कृष्णा। गंडकी नदी हरिहर धाम में भी नवद्वीप में है। हाँ, वैसे ये जो गंडकी नदी है वो नेपाल से चलती हुई आती है और बिहार में आती, भारत में आके वो गंडक नदी कहलाती है। वैसे वृंदावन में भी आप एक बद्रीनाथ पाएंगे, है ना, लेकिन ये ब्रज के ब्रज का बद्रीनाथ है। तो उसी तरह से नवद्वीप की गंडकी है। ठीक है, नहीं, शालिग्राम शिला तो केवल वहां चक्र तीर्थ में नेपाल में, 3 योजन या 24 मील की दूरी में उस क्षेत्र में जो शिलाएं पाई जाती हैं वो शालिग्राम शिलाएं हैं, इसलिए उसे मुक्ति क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा।
भरत भाई की 2 प्रिंसिपल ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड एवर
वर्डले। प्रश्न ये है कि ये 2 सिद्धांत क्यों, नियम क्यों, कि हमेशा कृष्ण को याद करना चाहिए, कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। बात तो एक ही हुई ना? हाँ, बात तो एक ही हुई, तो ऐसे क्यों? क्योंकि जब ये कहा गया है कि हमें कृष्ण का सदैव स्मरण करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे विधियों का पालन करना चाहिए जिसके कारण हम कृष्ण का स्मरण अधिक से अधिक कर सकें। तो उन चीज़ों को हमें करना चाहिए जो कि कृष्ण के स्मरण करने के लिए हमारे लिए लाभदायक हों, जो अनुकूल हों, इनको विधि कहते हैं, जो हमें करना चाहिए जिससे कि कृष्ण का स्मरण बढ़े। दूसरी ओर निषेध हैं। नियम दो प्रकार के होते हैं, एक है विधि जो हमें करना चाहिए और दूसरा है निषेध जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भी कई कार्य हैं निषेध, जिन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम वो कर लें तो हम भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए निषेधों का पालन करने से, अर्थात उन वर्जित कार्यों को न करके, हम भगवान को भूलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी भक्त लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं चार नियमों के बारे में। वे चार नियम क्या हैं? मांसाहार करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, ये है चार नियम। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, ये चार नियम है ना। तो इसलिए ये बताए गए हैं विधि और निषेध। ठीक है, शायद एक पांचवा नियम भी आजकल के समय होना चाहिए मोबाइल फोन के बारे में। समय के अनुसार नियमों में परिवर्तन होता है ना। और कोई सवाल किसी का? हाँ, माइक वहां दीजिए।
हरे कृष्ण। बता रहे थे कि भक्तों के लंगर स्तर रहते हैं। हाँ। हम उन्हें जान तो सकते नहीं, हम भक्ति में इतने उच्च स्तर पर नहीं है, तो उन्हें जाने भी ना, उनसे डेली करना तो वैष्णव प्राप्त में चला जाता है। तो कैसे फिर हम भक्तों, शुद्ध भक्तों में भी अलग अलग स्तर है, तो उनसे फिर कैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्त का स्तर के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए, इसको थोड़ा ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे।
वैसे थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। हरिदास ठाकुर भी ऐसे ही कहते हैं कि थोड़ी बहुत भक्त को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा भक्त किस स्तर पे है, परंतु ज़्यादा गहराई में इतना विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम अपराध भी कर बैठेंगे। ये ऐसे हैं, वो दिन भर हम यही करते रहेंगे, ये कौन से स्तर में है, वो कौन से स्तर में है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे बिहार में कहते हैं मोटा मोटी एक अंदाज होना चाहिए, मोटा मोटी, मोटा मोटी मतलब लगभग, लगभग एक अंदाज हो, बस काफी है हमारे लिए, और ज्यादा गहराई में विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्वयं शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हम ये चार सारी चीजें अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। और पीछे माताओं को भी सवाल तो आप हाथ ऊपर कीजिएगा।
छोटे बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, जैसे वो बहुत जिद्दी करते हैं और फिर हमें कैसे?
बड़े भी कम जिद करते हैं क्या? बच्चों का जिद तो खैर इतना हानिकारक नहीं होता जितना बड़ों का जिद होता है। बच्चे थोड़ा बहुत जिद कर लेते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये है बड़ों को कैसे संभालें जो जिद करते हैं। हम जिद्दी हैं इसलिए तो आए हैं यहां पर भौतिक जगत में। तो जैसा उचित इस विषय में तो हम प्रवीण नहीं है, बच्चों को कैसे संभालना है हमें ज्यादा अनुभव नहीं है। और कोई सवाल किसी के? हाँ जी। जैसे प्रभुपाद जी वो पहले जब बैक टू गॉडहेड पत्रिका उन्होंने निकाली थी, तो एक कार्टून था पुराने बैक टू गॉडहेड में, एक भक्त है किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा है चैंट चैंट चैंट, और वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कांट कांट कांट, जप करो जप करो जप करो, दूसरे बोले नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। एक सत्य घटना आपको बताता हूं, एक भक्त का अनुभव है जो डॉक्टर थे और हैं भी। तो उनकी एक मरीज थी जो वैसे एक महिला थी, वृद्ध थी और मृत्युशैया पर थी, बस अभी थोड़े ही मिनट रह गए थे प्राण त्यागने के लिए। तो भक्त ने देख डॉक्टर ने देखा जो भक्त थे कि अब कोई उपाय नहीं है, इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कान में जाके उस महिला से कहा हरे कृष्ण बोलिए। तो आँख खोल दी उस महिला ने, चेतना तो थी, चेतन अवस्था में थी, तो कुछ कहा नहीं, केवल देखती रह गई। तो डॉक्टर ने सोचा शायद सुन नहीं पा रही हैं या समझ नहीं पा रही हैं, तो दोबारा कह दिया हरे कृष्ण कहिए, फिर भी कुछ नहीं कहा। वैसे तो बहुत कमज़ोर थी, वैसे तो वृद्ध और फिर बीमार और मृत्युशैया पे, शरीर में इतनी ताकत तो थी नहीं। फिर ऐसे कई बार जब उस डॉक्टर भक्त ने कहा उसके कानों में हरे कृष्ण कहो कहिए कहिए, तो अंत में अनेक बार ऐसे कहने के बाद वो महिला में जितने शरीर में ताकत थी थोड़ी बहुत उसको इकट्ठा किया और सर यूं हिलाया, मतलब नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं कहूंगी, क्या किया जाए। तो खैर डॉक्टर क्या कर सकते थे, तो बड़ों का जिद और बच्चों का जिद कौन सा ज्यादा खतरनाक है। मृत्युशैया पे हैं और जितनी ताकत लगाई उन्होंने ये सर हिलाने के लिए, उतने से थोड़े से ताकत लगाकर हरे कृष्ण कह देती क्या फर्क पड़ता उनको, लेकिन नहीं कहा वो ताकत लगाकर और ना कह दिया।
हरे कृष्ण
हरे
कृष्ण,
नियमों का पालन करने का उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। हम नियमों का पालन क्यों करते हैं, ताकि धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए अनर्थों से कलमशों से, और धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े। तो विधि और निषेध, निषेधों का पालन करते हैं ताकि हमारे हृदय में दुर्गुण बढ़े नहीं, और हम विधियों का पालन करते हैं ताकि जो दुर्गुण हमारे हृदय में हैं उनका विनाश हो और साथ साथ कृष्ण प्रेम का उदय हो। ठीक है, तो ये नियम पालन करने का उद्देश्य है। तो ये हमें जानना चाहिए, यदि हम ये नहीं जानेंगे कि नियमों का पालन हम क्यों कर रहे हैं तो फिर वो यांत्रिक हो जाता है, बस हम करने के लिए कर रहे हैं। जैसे अधिकतर देखा जाता है कि जो मंदिरों में आदि जाते हैं उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों ये सब किया जा रहा है, धर्म क्या चीज़ है। तो नियमों का पालन तो करना चाहिए, परंतु उद्देश्य को भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, लेकिन माधवेंद्रपुरी की अवस्था में जब पहुंचेंगे फिर नियम का कोई महत्व नहीं है, फिर भी शुद्ध भक्त नियमों का पालन करते हैं। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, षड गोस्वामी के बारे में बताया गया है कि वो तो भगवान के पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, फिर भी संख्या पूर्वक वो अपनी जप आदि करते थे, परिक्रमा करते थे, नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे भक्तों को, वो भी नियम का पालन करते थे। क्योंकि भक्त कभी ये नहीं सोचता कि मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि अब मैं नियम का पालन नहीं करूँगा। माधवेंद्रपुरी की भावना ऐसी थी, वो निस्सहाय होकर ऐसे कर रहे थे। ठीक है, तो जब तक हम उस अवस्था में नहीं आते हैं, हमें बहुत सख्ती से नियमों का पालन करना चाहिए कृष्ण प्रेम को पाने के लिए। ठीक है, हाँ,
महाराज नियमों का पालन कर रहे हैं तो प्रेम पाने के लिए, तो महाराज कभी कभी जैसे कि एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा चैटिंग में मन लगे, हमें हर लफ्ज सुनाई दे, तो फिर जब उस पे नहीं पहुंच पाते तो थोड़ा।
हाँ, ये तो दूसरी बात है, ये क्योंकि हम अभी तक परिपक्व नहीं हैं, हम अभी वैधी भक्ति की अवस्था में हैं, इसलिए परिपूर्णता की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसके लिए समय तो लगेगा। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा समय तो लगेगा, इतने जन्म हमने बिताए माया में, लाखों करोड़ों जन्म बीत गए, अब गंभीरता पूर्वक हम साधन करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए हमें धीरज रखना चाहिए। सही समय पर सब हो जाएगा यदि हम अच्छी तरह से प्रयास करते रहें तो। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, हाँ जी, एक और अंतिम प्रश्न वहाँ है। हरे कृष्ण।
महाराज जैसे नियमों की बात होती थी, नियमों का पालन करना चाहिए, मंदिर में भी कई नियम होते हैं चले जाए के सामने, तो कोई उन नियमों को तोड़ रहा हो या हमें उन्हें रोकना चाहिए?
कौन से नियम को तोड़ रहा है उसके ऊपर निर्भर है, और वो व्यक्ति सामने वाला कौन है उसके उसके ऊपर भी निर्भर है, और कैसे बताएं हम, वो भी महत्वपूर्ण बात है। ऐसे कई नियम हैं जो यदि भगवान के सामने तोड़े जाएं तो बिना सोचे समझे आदमी को रोकना ही चाहिए, है ना। ऐसे थोड़े चीज़ें हैं, लेकिन कोई बहुत ही एक सूक्ष्म चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, उसके बारे में इतना बड़ा कुछ नहीं बनाना चाहिए। एक बार हमें याद है, कई साल पहले की बात है, कि दो माताजियों के बीच में बड़ा वाद हो गया। एक माताजी बड़े कट्टर प्रकार की थी, तो दूसरी माताजी बैठी थी, तो उनके जो अंगूठे थोड़ा बहुत नीचे से निकला था भगवान की ओर, तो दूसरी माताजी ने कहा नहीं ऐसे ठीक नहीं, दोनों के बीच में वाद हो गया, संबंध खराब हो गया। तो छोटी चीज़ है, ठीक है, टेक्निकली सही है वो जो बोल रही थी, लेकिन अच्छी तरह से बताना चाहिए। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी कोई बात है उस पे कुछ बहस ना हो बिना वजह के। तो इसलिए डिपेंड करता है कि कौन सा नियम तोड़ा जा रहा है, कितना गंभीर है वो। वैसे तो हम अभी समझ सारे नियमों के बारे में हम यदि जाने तो बेहोशी हो जाएंगे, कितने सारे नियम हैं। जैसे ऐसे आप बैठे हैं ना, वैसे बैठना वर्जित है, घुटनों में पैर देना, ऐसे करके बैठना, भगवान को पीठ दगा के बैठना, कितने सारे नियम हैं वैसे देखा जाए तो। तो जहां तक हो सके पालन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षित भक्त में और अप्रशिक्षित भक्त में ये अंतर होता है। प्रशिक्षित भक्त छोटी छोटी चीजें भी जानता है और पालन करता है, परंतु यदि कोई थोड़ी छोटी चीज से पालन नहीं कर रहा हो, कभी कभी बता भी सकते हैं, उचित होता है कभी बताना, कभी परिस्थिति के अनुसार न बताएं तो ठीक है, और बताएं भी तो बड़े प्रेम से बताएं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे।